दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में न्यू साउथ वेल्स ने 491 वीज़ा के लिए, जो एक रीजनल वीज़ा है, उसके लिए एक एक्सपेंडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट जारी की है। यानी इस लिस्ट में बहुत सारे नए ऑक्यूपेशंस जोड़े गए हैं और न्यू साउथ वेल्स का कहना है कि राज्य की, खासकर रीजनल एरियाज़ की ज़रूरतों को देखते हुए ये ऑक्यूपेशंस ऐड किए गए हैं। मेरे साथ माइग्रेशन एक्सपर्ट सुमन दुआ हैं, उनसे समझते हैं कि ये ऑक्यूपेशंस क्यों ज़रूरी हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं। सुमन दुआ, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
थैंक यू विवेक जी। सो न्यू साउथ वेल्स ने पहले एक्चुअली अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट निकाली थी और बहुत कम ऑक्यूपेशन थी उसमें, ओनली रिलेटिंग टू क्रिटिकल ऑक्यूपेशन थी। सो इट वॉज अ बिट डिसहार्डनिंग फॉर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर्स ऑक्यूपेशन लिस्ट, बहुत सारे एप्लीकेंट्स वहाँ एक्चुअली मूव हुए थे, जॉब्स वगैरह कर रहे थे, स्पेशली अकाउंटेंट्स एंड लॉट ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एज वेल, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स हैव ऑलवेज अकोमोडेटेड एप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल टू यू नो ड्यूरेशन, कि आप थोड़ी देर भी वहाँ पे हो तो अगर आप वहाँ पे हो एज लॉन्ग एज की एट द टाइम दे आर ओपन दे हैव इन्वाइटेड एप्लीकेंट्स इन द पास्ट। सो इस बारी जब वो खुले थे देन वी सो कि उनके पास तो कुछ ऑक्यूपेशन है ही नहीं है, बट यू नो दे हैव एक्चुअली गॉट लॉट ऑफ सीट्स ऑल्सो। सो लुक्स लाइक व्हाट्स हैपेंड इज कि उन्होंने वो जो क्रिटिकल ऑक्यूपेशन के लिए खोला था अपना स्टेट थोड़ी देर के लिए जब, तो जो एप्लीकेशन वो आ गई सो दैट्स फाइन, दे स्टिल सीट्स लेफ्ट। सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन बैक एंड दे हैव अपडेटेड देयर ऑक्यूपेशन लिस्ट। सो उनके अभी 13 रीजन है, एक और रीजन एक्चुअली हर साल उनका एक और रीजन एड हो जाता है, सो दिस टाइम दे हैव गॉट 13 रीजन। सो सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो है मरे में, जो उनका सदर्न इनलैंड है, वहां पे 137 ऑक्यूपेशन उन्होंने ओपन किया, और ये ओराना है उसमें 109 ऑक्यूपेशन है। सो दीज टू रीजन हैव गॉट द मैक्सिमम ऑक्यूपेशन। कुछ रीजन में अभी अकाउंटेंट्स भी हैं, ट्रेड ऑक्यूपेशन भी, एक्चुअली इट्स अ वेरी एक्सटेंडेड लिस्ट। सो बट उन्होंने बोला है कि उनकी स्ट्रीम 3 है, जिसमें कि इफ यू आर लिविंग एंड वर्किंग आउटसाइड ऑफ वेल्स, कि अगर आप वहां पे नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या ऑफशोर हो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिर्फ दो स्ट्रीम ओपन है, लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स एंड रिसेंटली कम्प्लीटेड स्टडी इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। अगर आपने 2 साल वहां पे पढ़ाई की है रीजनल न्यू साउथ वेल्स में, आप अप्लाई कर सकते हो। लिविंग एंड वर्किंग उन्होंने बोला है 12 महीने से। एक और जो कंसर्न काफी एप्लीकेंट्स का है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल उनकी ऑक्यूपेशन खुली है ओराना में, और वो ओराना में अगर नहीं है किसी और रीजन में है, कैन दे अप्लाई? सो दिस वन इज केस टू केस बेसिस।
ये जो नए ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं सुमन, वो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, किस इंडस्ट्री से हैं, अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सके तो?
एक्चुअली बहुत सारी अभी उन्होंने खोल दिया, अगर मैं खोलती हूँ और राणा का ही अगर हम देखें, सो लाइक आई सेड अबाउट 109 ऑक्यूपेशंस हैं। सो इंजीनियरिंग, क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस और आईटी ऑक्यूपेशंस तो है ही है, बट काफी रीजन्स में अभी ट्रेड ऑक्यूपेशंस भी हैं। और जैसे ओराना है, उन्होंने तो अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, वो भी उन्होंने खोला हुआ है। आर्किटेक्ट है, तो कारपेंटर है, एनरोल्ड नर्स, कुक, शेफ, पेस्ट्री कुक, बेकर, इलेक्ट्रीशियन, सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशंस एज वेल।
सो हाउ डज दैट वर्क, जो 13 रीजन्स आप बता रहे हैं, उन सभी रीजन्स की अलग अलग अपनी लिस्ट है?
जी, सो सबकी अलग अलग लिस्ट है। सो यू एक्चुअली हैव टू गो टू ईच रीजन एंड लुक एट देयर ऑक्यूपेशन लिस्ट, और देखना पड़ेगा कि आपकी ऑक्यूपेशन वहां पे है कि नहीं है।
और हालांकि हमें ये अभी भी नहीं पता है ना कि कितने सीट्स बाकी हैं और कितना जारी हो चुका है, कितना यूज हो चुका है।
न्यू साउथ वेल्स हैज एक्चुअली नेवर पुट दैट आउट इन पब्लिक, वो कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे डालते नहीं है वेबसाइट पे। जैसे अभी विक्टोरिया ने नया सिस्टम शुरू किया है, दे आर एक्चुअली टेलिंग अस हाउ मेनी सीट्स एंड एवरीथिंग आर लेफ्ट, बट न्यू साउथ वेल्स एक्चुअली डजंट डू दैट। बट लाइक यू नो लुकिंग एट द इमिग्रेशन नंबर्स इन द पास्ट, जो उनको माइग्रेशन नंबर्स मिले हैं, दे हैव ऑलवेज बीन गुड। So if you are in the regional New South Wales area and your occupation is one of the regions, you have a good chance to get invited.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए सुमन दुआ, आपका
धन्यवाद।
हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये जानकारी सिर्फ आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाने के लिए है, लेकिन यदि आप किसी केस विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं या उसके लिए गाइडेंस चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट या लॉयर से संपर्क करें।